पद 40 का छिपा हुआ इतिहास संख्या 18
दूसरा हाय भाग 5 प्रकाशित वाक्य 9 में नीनवे की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करने वाली कुंजी ऐसी ऐतिहासिक घटना में पूरी हुई जिसने एक निर्णायक मोड़ उत्पन्न किया और निस्संदेह कुंजी का कार्य यही होता है। मेरा दावा है कि नीनवे की लड़ाई केवल इस्लाम के उदय को चिह्नित करने वाली ऐतिहासिक कुंजी ही नहीं थी बल्कि वो एक भविष्यवाणीगत कुंजी भी है। उस युद्ध की भविष्यवाणीगत गति की जैसा कि दानियेल और प्रकाशित वाक्य में प्रस्तुत है बाइबल की भविष्यवाणी के राज्यों की सभी रेखाओं को दानियेल के 11वें अध्याय के साथ एक रूप कर देती है। ऐसा करने में ये उन सभी राज्यों को दानियेल 11 की अंतिम 6 आयतों के विषय में साक्ष्य देने की अनुमति देती है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से 40वीं आयत के बाह्य गुप्त इतिहास की मुहर खोल देती है।
और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मत्ती 16:19
मोहम्मद के राज्य का विमोचन और उदय 683 में नीनवे का युद्ध उस फारसी शक्ति के अंतिम 10 वर्षों के आरंभ का संकेतक था जिसे परमेश्वर की प्रबंधकारी धुंध के साथ रोम की युक्ति द्वारा पराजित किया गया था। ये उस मोड़ को चिह्नित करता था जहां से मुहम्मद की इस्लामी भिड़े उठनी आरंभ होती हैं। इस युद्ध ने उस बंधन को हटा दिया जो विद्यमान था, एक ऐसा बंधन जो सिद्धांततः बना रहता यदि रोम और फारस दोनों ने अपनी अपनी शक्ति बनाए रखी होती। दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया।
संयम और विमोचन
इस्लाम के भविष्यद्वाणी परक निरूपण में हम पवित्र शास्त्र के प्रथम परिचय से ही इस्लाम के संयमन और विमोचन को पाते हैं। जैसा कि सारा ने इब्राहिम को हाजिरा और इश्माएल को नियंत्रित रखने के लिए राजी किया
और साराय ने अब्राम से कहा, मेरा अन्याय तुझ पर हो, मैंने अपनी दासी को तेरी गोद में दिया और जब उसने देखा कि वो गर्भवती हुई है तो मैं उसकी दृष्टि में तुच्छ ठहरी, यहोवा मेरे और तेरे बीच न्याय करे। तब अब्राम ने साराय से कहा, देख तेरी दासी तेरे ही हाथ में है, जो तुझे अच्छा लगे उसके साथ वही कर। और जब साराय ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया तब वो उसके सामने से भाग गई। उत्पत्ति 16:5-6
उस घटना से भी पहले हाजिरा को भविष्यवाणी संबंधी वर्णन में प्रस्तुत किए जाने का कारण ये है कि प्रभु ने सारा को संतान उत्पन्न करने से रोक रखा था।
अब्राम की पत्नी साराय ने उसके लिए कोई संतान उत्पन्न न की थी और उसकी एक दासी थी जो मिस्री थी जिसका नाम हाजिरा था। और साराय ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने मुझे संतान उत्पन्न करने से रोक रखा है, मैं तुझसे विनती करती हूँ तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मैं उसके द्वारा संतान प्राप्त करूँ। और अब्राम ने साराय की बात मान ली। उत्पत्ति 16:1-2
प्रकाशित वाक्य 9 की वो कुंजी जो मुहम्मद को दी गई थी और जो इसके पश्चात नीनवे की लड़ाई द्वारा पूर्ण हुई भविष्यवाणी के इतिहास में किसी भी निर्दिष्ट बिंदु पर इस्लाम पर लगी रोक के हटाए जाने का प्रतिनिधित्व करती है।
स्वर्गदूत चारों वायुओं को थामे हुए हैं जिन्हें एक क्रुद्ध घोड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो छूटकर निकल भागने और सारी पृथ्वी के मुख पर दौड़ पड़ने का प्रयत्न कर रहा है और अपने मार्ग में विनाश और मृत्यु को लिए हुए है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस Vol. 2:117
मुहम्मद के राज्य का उदय और पतन उतना अधिक उदय और पतन के रूप में नहीं जितना कि एक मुक्ति और एक नियंत्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब इस्लाम को भविष्यद्वाणी के अनुसार मुक्त किया जाता है तब उस मुक्ति का चित्रण नीनवे की लड़ाई के द्वारा किया गया है।
केवल हाय
7 तुरहियों में से केवल इस्लाम की हाय तुरहिया ही इतिहास में एक निरंतर सामर्थ्य के रूप में उस समय से लेकर जब वे पहली बार भविष्यद्वाणी के इतिहास में प्रकट की गई परीक्षा काल के समापन तक विस्तृत होती है। पश्चिमी रोम पर लाई गई पहली 4 तुरहिया ओडो एसर, गेंसेरिक, अत्तीला द हुन और अलारिक का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस प्रकार वे उत्तर काल में ईश्वरीय विधान के 4 न्यायकारी सामर्थ्यों का प्रतिरूप ठहरती हैं, परंतु उनका आधुनिक समकक्ष उन 4 प्राचीन सामर्थ्यों का प्रत्यक्ष वंशज नहीं है। हाय तुरहियों के साथ ऐसा नहीं है। एक बार जब इस्लाम इतिहास में प्रवेश करता है तब वो विमोचन और संयम की एक सीधी रेखा में तब तक बना रहता है जब तक कि परीक्षा काल के समापन पर उसे पूर्णतः मुक्त न कर दिया जाए। हाय तुरहियों के साथ कुंजी अर्थात विमोचन का चिन्ह नीनवे के युद्ध द्वारा अंकित किया गया है।
निके मीडिया और 27 जुलाई 1299।
अग्रदूतों ने ठीक ही 27 जुलाई 1299 को उन 150 वर्षों का आरंभ माना जो 27 जुलाई 1479 को समाप्त हुए और उसी से आगे 391 वर्ष और 15 दिन आरंभ हुए जिनका समापन 11 अगस्त 1840 को हुआ। पिछले लेख में हमने 1333 से 1337 तक निकोमीडिया पर सुल्तान ओरहान गाजी उस्मान प्रथम के पुत्र जो उस्मानी बेयलिक के संस्थापक थे द्वारा डाले गए घेरे की पहचान की थी जब उसने निकोमीडिया के महत्वपूर्ण बाइजेंटाइन नगर को घेर लिया। ये घेरा निकोमीडिया के विरुद्ध उस युद्ध का समापन है जो उसके पिता उस्मान के साथ आरंभ हुआ था। प्रकाशित वाक्य 9-7-10 के 150 वर्ष 27 जुलाई 1299 को आरंभ हुए और किसी भविष्यवाणी के आरंभ के रूप में उस आरंभ तिथि से संबद्ध इतिहास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस्मान प्रथम उस्मानी वंश के संस्थापक सुल्तान ओरहान गाजी के पिता थे जिन्होंने 27 जुलाई 1299 को निकोमीडिया के क्षेत्र में निकोमीडिया नगर के निकट बाफेउस के युद्ध में बाइजेंटाइन साम्राज्य के विरुद्ध वो महत्वपूर्ण आरंभिक विजय प्राप्त की जो रोमन तथा आरंभिक बाइजेंटाइन इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजधानी नगर था।
पिता और पुत्र।
23 जुलाई 1290 को उस्मान की सेनाओं ने एक स्थानीय राज्यपाल के नेतृत्व में आई एक बीजेंटीनी सेना को पराजित किया। ये युद्ध बिथिनिया उत्तर पश्चिमी अनातोलिया में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना आरंभ कर देने के बाद उस्मान की प्रथम प्रमुख स्वतंत्र सैन्य सफलताओं में से एक माना जाता है। इसने एक छोटे तुर्की बेलिक जनजातीय रियासत से उस उदीयमान शक्ति में रूपांतरण के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया जो अंततः बीजेंटीनी प्रदेशों को चुनौती देगी और उन पर विजय प्राप्त करेगी। वो तिथि इस्लाम के लिए वृद्धि के एक ऐसे काल का आरंभ चिह्नित करती है जो अंततः 1653 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के समय उस्मानी साम्राज्य की स्थापना तक पहुंचा। उस्मान ने गाजी योद्धाओं इस्लामी प्रेरणा से संचालित सीमांत छापामारों का उपयोग किया और वहीं से इन गाजी सीमांत योद्धाओं के एक अधिक संगठित सेना में रूपांतरण का प्रारंभ हुआ जो क्रमशः उस्मान से विकसित होकर उसके पुत्र ओरहान तक पहुंचा। उस्मान की विरासत के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में ये भी है कि उसके कारण इस्लाम संपत्ति पर अधिकार बनाए रख सका। इसके विपरीत गाजी योद्धाओं के युद्ध कर्म में उनकी अव्यवस्थित आक्रमण और प्रत्यावर्तन की युक्तियां उन्हें उनकी विजयों की लूट तो दे जाती थीं, पर कभी कोई भूक्षेत्र नहीं।
27 जुलाई 1299 को उस्मान ने निकोमीडिया के क्षेत्र में एक सैन्य अभियान आरंभ किया और 34 वर्ष बाद उसके पुत्र ने राजधानी नगर निकोमीडिया पर 4 वर्ष का घेराव आरंभ किया। पिता आरंभ में और पुत्र अंत में युद्ध उस क्षेत्र के विरुद्ध आरंभ होता है जिसका निरूपण निकोमीडिया के रूप में किया गया है और निकोमीडिया अर्थात उस क्षेत्र की राजधानी निकोमीडिया पर अधिकार कर लेने के साथ समाप्त होता है। 1299 से 1347 तक 38 वर्षों की अवधि होती है और भविष्यद्वाणी की दृष्टि से 38 संख्या उठ खड़े होने का प्रतीक है।
तब मैंने कहा, अब उठो और ज़ेरेद नाले को पार करो। सो हमने ज़ेरेद नाले को पार किया और कादेश बर्नेया से चलकर ज़ेरेद नाले के पार पहुंचने तक का समय 38 वर्ष का था, जब तक कि युद्ध के सब पुरुषों की वो पीढ़ी जैसा यहोवा ने उनसे शपथ खाई थी छावनी के बीच से नष्ट न हो गई। व्यवस्था विवरण 2-13-14।
27 जुलाई 1299 से 27 जुलाई 1499 तक के 150 वर्ष उस अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के दूसरे हाई के उस्मानी साम्राज्य की स्थापना तक पहुंचाया। निकोमीडिया की क्रमिक विजय के 38 वर्ष एक पिता उस्मान के साथ आरंभ हुए और उसके पुत्र ऑर्फन के साथ समाप्त हुए। ये अवधि एक जनजातीय रियासत के क्रमिक उदय के प्रथम चरण को जो एक साम्राज्य तक पहुंचा चित्रित करती है।
27 जुलाई 1290 से 27 जुलाई 1454 तक के 150 वर्षों में 4 वर्ष की एक घेराबंदी सम्मिलित है जो 38 वर्षों के अंत को चिह्नित करती है। निकोमीडिया की विजय का प्रारंभ पिता उस्मान द्वारा हुआ था
और उसका अंत 1333 से 1337 तक की 4 वर्ष की घेराबंदी के द्वारा पूरा किया गया, एक ऐसी घेराबंदी जिसे उस्मान के पुत्र ने संचालित किया। जब 150 वर्ष 27 जुलाई 1439 को समाप्त हुए, तब बीजेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11वें अर्थात पूर्वी रोम के अंतिम कॉन्स्टेंटाइन ने सिंहासन ग्रहण करने के लिए तुर्कों से अनुमति मांगी। उस तिथि से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल के विजय किए जाने तक 4 वर्ष थे। वे 4 वर्ष कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी के साथ समाप्त हुए और अंतिम कॉन्स्टेंटाइन उसी घेराबंदी में मारा गया। इस्लाम का उदय 150 वर्षीय भविष्यवाणी के प्रथम 38 वर्षों द्वारा निरूपित है, जिसका परिपाक 4 वर्षीय घेराबंदी में हुआ। जब 150 वर्ष समाप्त हुए, तब इस्लाम उस बिंदु तक उठ चुका था जहां पूर्वी रोम उस सामर्थ्य के कारण अपमानित हुआ जो उस समय तुर्कों के पास थी। 27 जुलाई 1439 के उस अपमान से 4 वर्ष पूर्वी रोम के पतन तक ले गए, जब कॉन्स्टेंटिनोपल एक घेराबंदी के द्वारा ले लिया गया। प्रथम 38 वर्षों का अंत एक घेराबंदी द्वारा चिह्नित है और उस्मानी साम्राज्य की स्थापना भी एक घेराबंदी द्वारा चिह्नित है।
38 और 40
व्यवस्था विवरण में मूसा द्वारा प्रतिपादित प्रतीक के रूप में संख्या 38 जंगल में 40 वर्ष के भटकने के न्याय के अंतिम 38 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए प्रतीक के रूप में संख्या 38 का संख्या 40 के साथ एक संबंध है। उस्मान ने 27 जुलाई 1299 को निकोमीडिया के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 38 वर्ष बाद उसके पुत्र ने उस क्षेत्र की राजधानी पर अधिकार कर लिया। वो क्षेत्र और राजधानी नगर दोनों ही निकोमीडिया थे। इतिहासकार इस युद्ध की पहचान उन 2 चरणों में प्रथम के रूप में करते हैं जो उस्मानी साम्राज्य के उदय के बिल्कुल प्रारंभ को चिह्नित करते हैं। इतिहास द्वारा चिह्नित 2रा चरण 1301 में नाइसिया का युद्ध है। वहां पिता उस्मान ने नाइसिया कहलाने वाले क्षेत्र पर अधिकार किया और 1331 में 30 वर्ष बाद उसके पुत्र ने राजधानी नगर पर अधिकार कर लिया, जिसका नाम नाइसिया था, जो कभी एक रोमी राजधानी नगर था।
1999 और निकोमीडिया के युद्ध के संबंध में 2 चरणों में से प्रथम चरण के रूप में 2रा चरण 2 वर्ष बाद 1301 में आया। 1999 38 का एक प्रतीक है और 2 वर्ष बाद 40 नाइसिया का क्षेत्र पिता द्वारा ले लिया जाता है। प्रतिज्ञात देश को लेने के लिए प्राचीन इसराइल के उठ खड़े होने में 38 और 40 का जो संबंध है वो 27 जुलाई 1999 और 1301 में निरूपित होता है। इस्लाम के उदय के वे पहले 2 चरण सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित हैं जो पिता द्वारा उस क्षेत्र को जीतने से आरंभ होते हैं और अंत में पुत्र द्वारा उस क्षेत्र की राजधानी को जीतने पर समाप्त होते हैं। जब वे दोनों राजधानियां गिरी तो वे घेराबंदी में गिरी। दोनों राजधानियां किसी समय पूर्वी रोम की राजधानियां रह चुकी थी।
27 जुलाई 1299 और 1301 का समापन 11 अगस्त 1840 को होता है। ये 1838 के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है जब लिच ने पहली बार 391 वर्ष और 15 दिनों की उस भविष्यवाणी के विषय में अपना दृष्टिकोण और अपनी भविष्यवाणी प्रकाशित की जो अंततः 11 अगस्त 1840 को पूर्ण होने वाली थी। मिलेराइटों के लिए उठ खड़े होने के 2 चरण 1838 और 1840 के वर्ष थे।
सन 1840 में भविष्यवाणी की एक और उल्लेखनीय पूर्ति ने व्यापक रुचि उत्पन्न की। उससे 2 वर्ष पूर्व दूसरे आगमन का प्रचार करने वाले प्रमुख सेवकों में से एक जोसिया लिच ने प्रकाशित वाक्य 9 की एक व्याख्या प्रकाशित की थी, जिसमें उस्मानी साम्राज्य के पतन की भविष्यवाणी की गई थी। उसके गणना के अनुसार इस शक्ति का पराभव ईस्वी सन 1840 में अगस्त महीने के किसी समय होना था और उसके पूर्ण होने से केवल कुछ ही दिन पहले उसने लिखा, यदि प्रथम अवधि अर्थात 125 वर्ष को इस प्रकार ठीक ठीक पूर्ण हुआ माना जाए कि दियाकोजिस तुर्कों की अनुमति से सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और ये कि 391 वर्ष और 15 दिन पहली अवधि की समाप्ति पर आरंभ हुए, तो वो 11 अगस्त 1840 को समाप्त होगा जब कुस्तुनतुनिया में उस्मानी शक्ति के टूट जाने की अपेक्षा की जा सकती है। और मेरा विश्वास है कि यही सत्य सिद्ध होगा। जोसिया लिच इन साइंस ऑफ द टाइम्स एंड एक्सपोजिटर ऑफ प्रोफेसी, 1 अगस्त 1840। ठीक उसी समय जो निर्दिष्ट किया गया था, तुर्की ने अपने राजदूतों के माध्यम से यूरोप की सहयोगी शक्तियों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अपने को मसीही राष्ट्रों के नियंत्रण के अधीन कर दिया। इस घटना ने भविष्यवाणी को ठीक ठीक पूरा कर दिया। जब ये बात ज्ञात हुई तो बहुत से लोग मिलर और उसके सहयोगियों द्वारा अपनाए गए भविष्यवाणी व्याख्या के सिद्धांतों की सत्यता के प्रति आश्वस्त हो गए और आगमन आंदोलन को एक अद्भुत प्रेरणा मिली। विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति दोनों मिलर के साथ उसकी मान्यताओं का प्रचार करने और उन्हें प्रकाशित करने में सम्मिलित हो गए और 1840 से 1844 तक ये कार्य तीव्र गति से फैलता गया। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 303-345।
लिच की 38 की भविष्यवाणी और 40 के बारे में उनका संशोधित दृष्टिकोण उनके अंतिम कथन को सम्मिलित करते हैं, जिसे उन्होंने संशोधित भविष्यवाणी से 10 दिन पहले 1 अगस्त को लिखा था। इसी भविष्यवाणी की पूर्ति ने संसार को बाइबलीय भविष्यवाणी की सही कार्यविधि के विषय में आश्वस्त किया। वे 38 वर्ष जिन्होंने प्राचीन इसराइल के उदय को चिह्नित किया, उनमें लाल समुद्र को पार करने से लेकर कादेश में प्रथम विद्रोह तक के 2 वर्ष भी सम्मिलित थे।
क्योंकि उन सब मनुष्यों ने जिन्होंने मेरी महिमा और मेरे वे चमत्कार देखे हैं जो मैंने मिस्र में और जंगल में किए, और अब 10 बार मेरी परीक्षा ली है और मेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया है, निश्चय ही वे उस देश को न देखेंगे जिसकी शपथ मैंने उनके पितरों से खाई थी, और जिन्होंने मुझे क्रोधित किया है उनमें से कोई भी उसे न देखेगा। गिनती 14:22-23।
उस विद्रोह की पहचान 10 परीक्षाओं में अंतिम के रूप में की गई है। 10 परीक्षाओं की 2 वर्षीय परीक्षा अवधि, जिसे जंगल में 38 वर्षों के साथ जोड़ा गया, 1838 और 1840 का प्रतीक थी, और 1840 में 10 दिनों की एक अवधि सम्मिलित थी, और 27 जुलाई 1299 को उस्मान के साथ इस्लाम के उदय का प्रारंभ 38 वर्षीय अवधि का आरंभ करता है, जो 1337 में 4 वर्षीय घेरेबंदी पर समाप्त होती है। 27 जुलाई 1299 इतिहासकारों द्वारा उस्मानी साम्राज्य के उदय के प्रारंभ बिंदु के रूप में पहचाने गए 2 चरणों में से पहला था, और दूसरा चरण 1301 था। 1221 नाथ और 1301 में निकोमीडिया और नाइसिया के युद्धों के ये 2 चरण 1838 और 1840 का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। भविष्यवाणी का प्रारंभ उसके अंत को स्पष्ट करता है। निकोमीडिया और निकाइया दोनों ने अपने अपने इतिहास में पूर्वी रोम की राजधानियों के रूप में अस्थायी रूप से सेवा की। निस्संदेह अंततः कॉन्स्टेंटिनोपल 330 से 4317 तक पूर्वी राजधानी बना रहा। निकोमीडिया और निकाइया कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन का पूर्व रूप प्रस्तुत करते हैं। ये सभी इस्लामी घेराबंदियों के कारण गिरे जिन्होंने उस अभियान के समापन को चिह्नित किया, जिसमें इस्लाम ने पहले उस भूभाग पर नियंत्रण प्राप्त किया और उसके पश्चात राजधानी नगर पर अधिकार कर लिया।
पहली घेराबंदी 1333 से 1337 तक के 4 वर्षों की, 1449 से 1433 तक के उन 4 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है जब भविष्यवाणी समाप्त हुई। 391 वर्ष और 15 दिन बाद इस्लाम को रोका जाता है, क्योंकि मिलेराइट्स उठ खड़े होते हैं उस भविष्य सूचक सामर्थ्य के अधीन जो 38 और 40 की विशेषताओं में निरूपित है, जैसा कि 27 जुलाई 1299 और 27 जुलाई 1499 के इतिहास की अल्फा इतिहास में प्रदर्शित है। इस्लाम का उदय और परमेश्वर के अंतकालीन संदेश वाहकों का उदय एक ऐसे संख्यात्मक प्रतीक में निरूपित है जो 38 और 40 के संख्यात्मक संबंध द्वारा निर्मित है।
ये हेजकेल 37 में इस्लाम उस पूर्वी पवन का संदेश है जो मरी हुई सूखी हड्डियों पर फूंकी जाती है ताकि वे उठकर एक बड़ी सेना के रूप में खड़ी हो जाएं। जब ये हेजकेल का संदेश पहुंचता है तब उठ खड़े होने की प्रक्रिया आरंभ होती है, जैसा कि 1838 और 1840 के मिलेराइट इतिहास में हुआ था। वो संदेश 9/11 को पहुंचा और शीघ्र आने वाले संडे लॉ के समय वे हड्डियां एक बड़ी सेना के रूप में खड़ी हो जाती हैं। उत्तरकाल में विजयी कलीसिया के रूप में परमेश्वर की सेना का उठाया जाना 1838 और 1840 द्वारा प्रतिरूपित है। 9/11 से लेकर संडे लॉ तक की अवधि 1840 से 1844 द्वारा प्रतिरूपित थी, परंतु वो 31 दिसंबर 2023 से लेकर नैशविल के अग्निगोलों तक की अवधि का भी प्रतिरूप है।
पूर्वी रोम।
कॉन्स्टेंटिन प्रथम महान द्वारा साम्राज्य के विभाजन से लेकर अंतिम कॉन्स्टेंटिन तक पूर्वी रोम का भविष्यवाणी संबंधी इतिहास निरूपित होता है। अतः ये भविष्यवाणी काल एक भविष्यवाणी परक अथवा प्रतीकात्मक पिता और एक पुत्र द्वारा चिन्हित है, जैसा कि उनके नाम से प्रकट होता है। यद्यपि कॉन्स्टेंटिन महान और कॉन्स्टेंटिन एकादश के बीच प्रत्यक्ष रक्त संबंधी वंशानुक्रम नहीं था, प्रथम और अंतिम कॉन्स्टेंटिन को भविष्यवाणी में अल्फा और ओमेगा के प्रतीकों के रूप में भी दर्शाया गया है, और पिता अल्फा ने कॉन्स्टेंटिनोपल को राजधानी चुना तथा पुत्र ओमेगा घेराबंदी के दौरान मारा गया जब कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी होना बंद हो गया। पूर्वी रोम का भविष्यवाणी काल प्रथम और अंतिम कॉन्स्टेंटिन द्वारा चिन्हित है। 27 जुलाई 1299 को आरंभ हुआ 150 वर्षों का काल 38 वर्षों की एक अवधि को सम्मिलित करता है और 40 वर्षों की एक घेराबंदी पर समाप्त होता है। उस घेराबंदी ने 1449 से 1443 तम की अवधि का प्रकारात्मक पूर्व चित्रण किया। निकोमीडिया का अभियान एक प्रदेश के विजय किए जाने से आरंभ हुआ और उस प्रदेश की राजधानी के विजय किए जाने पर समाप्त हुआ। जैसे प्रथम और अंतिम कॉन्स्टेंटिन के साथ था, वैसे ही निकोमीडिया की विजय एक पिता प्रथम से आरंभ हुई और एक पुत्र अंतिम पर समाप्त हुई।
चार वर्ष
150 वर्षों के आरंभिक काल में 4 वर्षों की घेराबंदी हुई, जो 1449 में अंतिम कॉन्स्टेंटाइन के अपमान से लेकर 1353 तक के उन 4 वर्षों की ओर ले गई जब कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी की गई और वो गिर पड़ा। दूसरे शोक की समय भविष्यवाणी, जो 391 वर्ष और 15 दिनों का प्रतिनिधित्व करती है, 27 जुलाई 1449 को आरंभ हुई और 11 अगस्त 1840 को समाप्त हुई। वो तिथि 4 वर्षों की एक अवधि के आरंभ को चिह्नित करती है, जिसे सिस्टर व्हाइट ने परमेश्वर की शक्ति की एक महिमामयी अभिव्यक्ति कहा।
वह स्वर्गदूत जो तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की घोषणा में सम्मिलित होता है, अपने तेज से सारी पृथ्वी को आलोकित करने वाला है। यहाँ एक ऐसे कार्य की भविष्यवाणी की गई है जिसका विस्तार विश्वव्यापी होगा और जिसकी शक्ति अभूतपूर्व होगी। 1840-44 का आगमन आंदोलन परमेश्वर की सामर्थ्य का एक महिमाम प्रकटन था। पहले स्वर्गदूत का संदेश संसार के प्रत्येक मिशनरी केंद्र तक पहुंचाया गया और कुछ देशों में ऐसा महान धार्मिक जागरण हुआ जैसा 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार के बाद से किसी भी देश में नहीं देखा गया था। परंतु इन सबको तीसरे स्वर्गदूत की अंतिम चेतावनी के अधीन होने वाले उस प्रबल आंदोलन द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 691।
11 अगस्त 1840 को इस्लाम को रोक दिया गया और वहाँ 4 वर्षों की एक अवधि थी, जो पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने तथा प्रकाशित वाक्य 18 के सामर्थी स्वर्गदूत के अवतरण जब 9 गुड़े गया को तीसरे हाय का इस्लाम न्यूयॉर्क की बड़ी इमारतों पर आ पड़ा, इन दोनों के साथ संगति रखती है। 9 गुणे गया 144,000 के सील किए जाने के समय का आरंभ चिह्नित करता है। सील किया जाना समय की एक अवधि है और उस सील किए जाने की अवधि का अंत उस अवधि के आरंभ की विशेषताओं को धारण करता है। जब 9 गुणे गया पर मसीह अवतरित हुआ, तब उसने 31 दिसंबर 2023 को 2 गवाहों को जिलाने के लिए मीखायल के अवतरित होने का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। जब सील किए जाने की अंतिम अवधि आरंभ हुई, वो कुंजी जो नीनवेह की लड़ाई है, इस्लाम की विभिन्न मुक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो 1353 तक पूर्वी रोम को गिरा देंगी। पद 10 के 5 महीने के 150 वर्षों के भीतर आरंभ तथा अंत दोनों में 4-4 वर्षों की एक अवधि निहित है। ये दोनों 4 वर्षीय अवधियां 391 वर्ष और 15 दिनों की समाप्ति से जुड़ती है, जिसने 1840 से 1844 तक की 4 वर्षीय अवधि को चिह्नित किया, जब मसीह सारी पृथ्वी को अपनी महिमा से प्रकाशित करेगा। 1844 में भविष्यद्वाणी संबंधी समय का लागू होना समाप्त हो गया, क्योंकि समय फिर न रहेगा।
और उसकी शपथ खाई जो युगानुयुग जीवित रहता है, जिसने स्वर्ग और उसकी सब वस्तुएं और पृथ्वी और उसकी सब वस्तुएं और समुद्र और उसकी सब वस्तुएं सृजी, कि फिर समय न रहेगा। प्रकाशित वाक्य 10 जेहनवी
1333 से 1333, 1444 से 1435, 184 सिंह से 1844।
चार वर्षीय अवधियों की वे तीन पंक्तियां 9/11 से लेकर रविवार के विधान तक की मुद्रांकन कालावधि के साथ संरेखित है और वे 9/11 से रविवार के विधान तक के उस फ्रैक्टल के साथ भी संरेखित हैं जो 21 दिसंबर 2023 से लेकर उस समय तक निरूपित किया गया है जब नैशविल के अग्नि गोलों को पहुंचाने के लिए इस्लाम को फिर से छोड़ दिया जाता है।
31 दिसंबर 2023 के भविष्यवाणीगत फ्रैक्टल से लेकर नैशविल के अग्निगोलों तक की घटनाओं को 3-4 वर्षीय भविष्यवाणीगत अवधियों के द्वारा प्रतिरूपित किया गया है जो सभी 9/11 से लेकर रविवार के कानून तक के मुद्रांकन समय के साथ संरेखित होती हैं। इस प्रकार चार साक्षी 31 दिसंबर 2023 से नैशविल पर हुए आक्रमण तक के इतिहास की पहचान करते हैं और नीनवे की लड़ाई ही वो कुंजी थी जो इन प्रत्येक साक्षियों के लिए लागू होती है। 1-3-3, 1-4-4-9, 8-1-4-0 और 9/11 ये सभी मोड़ बिंदु थे, कुंजियां।
अतीत के इतिहास से सीख लेने योग्य शिक्षाएं हैं और इन पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ताकि सब समझ सकें कि परमेश्वर अब भी उसी रीति से कार्य करता है जिस रीति से वो सदा करता आया है। उसका हाथ उसके कार्य में और राष्ट्रों के बीच अब भी उसी प्रकार दिखाई देता है जैसा वो उस समय से सदा दिखाई देता आया है जब सुसमाचार का प्रथम प्रचार अदन में आदम को किया गया था। ऐसे काल आते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ होते हैं। परमेश्वर की ईश्वरीय व्यवस्था में जब ये विभिन्न संकट उपस्थित होते हैं तब उस समय के लिए ज्योति दी जाती है। यदि उसे ग्रहण किया जाता है तो आत्मिक उन्नति होती है, यदि उसे अस्वीकार किया जाता है तो आत्मिक अधोगति और विश्वास नाश उसके पीछे आते हैं। प्रभु ने अपने वचन में सुसमाचार के उस आक्रामक कार्य को प्रकट किया है जैसा कि वो अतीत में संचालित किया गया है और भविष्य में भी होता रहेगा, यहाँ तक कि उस अंतिम संघर्ष तक जब शैतानी शक्तियाँ अपनी अंतिम अद्भुत चाल चलेंगी। बाइबल एको, अगस्त 26, 1895।
निका मीडिया। 284 में सम्राट बनने के बाद 293 में डायोक्लेशियन ने जब साम्राज्य को विधिक रूप से पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया और टेट्रार्की प्रणाली की स्थापना की तब निकोमीडिया को रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी के रूप में चुना। निकोमीडिया कई दशकों तक पूर्व में मुख्य प्रशासनिक और सैन्य राजधानी के रूप में कार्य करता रहा। महान कॉन्स्टेंटाइन ने निकटवर्ती बाइजेंटियम में नई राजधानी बनाने का निर्णय लेने से पहले इसे अपने आधार के रूप में उपयोग किया जिसका उसने 330 में नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। कॉन्स्टेंटिनोपल के मुख्य राजधानी बन जाने के बाद भी निकोमीडिया एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र बना रहा क्योंकि वो मरमरा सागर के पूर्वी तट पर सामरिक दृष्टि से स्थित था। इसलिए यद्यपि वो रोम या कॉन्स्टेंटिनोपल की भांति स्थायी राजधानी नहीं था तथापि रोमन इतिहास के एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल में निकोमीडिया को आधिकारिक रूप से पूर्वी राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया था। 150 वर्षों के आरंभ में पूर्वी रोम की एक राजधानी विजित की जाती है और अंत में भी पूर्वी रोम की एक राजधानी विजित की जाती है। दोनों विजयों में घेराबंदी सम्मिलित थी।
डायोक्लेटियन।
सम्राट डायोक्लेटियन ने 293 में टेट्रार्की व्यवस्था लागू करते समय आधिकारिक रूप से निकोमीडिया को रोमी साम्राज्य की पूर्वी राजधानी बना दिया। टेट्रार्की व्यवस्था साम्राज्य के एक पश्चिमी और एक पूर्वी विभाजन से मिलकर बनी थी और पूर्व तथा पश्चिम दोनों में एक वरिष्ठ सम्राट ऑगस्थाई और एक कनिष्ठ सम्राट सीजर नियुक्त था जिससे 4 की वो संख्या पूर्ण होती थी जिसका संकेत टेट्रार्की शब्द से होता है।
अल्फा और ओमेगा।
डायोक्लेशियन स्मूर्ना की कलीसिया का ओमेगा प्रतीक है और नीरो अल्फा प्रतीक है। कॉन्स्टेंटाइन महान पिर्गमुन की कलीसिया का अल्फा प्रतीक है और जस्टिनियन ओमेगा प्रतीक है। रोम का विधिक रूप से पूर्व और पश्चिम में विभाजन जो स्थायी नहीं रहा डायोक्लेशियन द्वारा संपन्न किया गया और रोम का भविष्यवाणीगत पूर्व और पश्चिम में विभाजन कॉन्स्टेंटिन द्वारा संपन्न किया गया। उत्पीड़न की दूसरी प्रतीकात्मक कलीसिया के इतिहास के दौरान जिसका प्रतिनिधित्व स्मूर्ना करती है रोम का विधिक रूप से पूर्व और पश्चिम में विभाजन किया गया और समझौते की तीसरी प्रतीकात्मक कलीसिया के इतिहास में जिसका प्रतिनिधित्व परगामुस करती है रोम का भविष्यवाणीगत रूप से पूर्व और पश्चिम में विभाजन किया गया। 233 अल्फा था और 330 ओमेगा था और 11 मई 330 को
कॉन्स्टेंटिन महान ने कॉन्स्टेंटिनोपल को साम्राज्य की राजधानी के रूप में समर्पित किया।
293 में डायोक्लेटियन द्वारा किया गया वैधानिक विभाजन उसके बाद हुए गृहयुद्ध के कारण बिखर गया और ये स्थिति सन 313 में मिलान की आज्ञप्ति तक बनी रही, जब पूर्व के कॉन्स्टेंटाइन और पश्चिम के लिसिनियस ने मिलान की आज्ञप्ति जारी की, जिसने मसीही धर्म को वैध ठहराया और प्रभावी रूप से चतुराधिपत्य का अंत कर दिया, अर्थात चार समन्वित शासकों की वो व्यवस्था जो सिकुड़कर दो मुख्य शक्तियों पश्चिम में कॉन्स्टेंटाइन और पूर्व में लिसिनियस के बीच संघर्ष में परिणत हो गई थी। ये वैधानिक विभाजन जिसने पतन का मार्ग प्रशस्त किया, विभाजन से विभाजन तक की 20 वर्षीय अवधि का प्रतिनिधित्व करता है और दोनों विभाजनों ने उस व्यवस्था के पतन को उत्प्रेरित किया।
स्मूर्ना की कलीसिया का आरंभ 64 ईस्वी में नीरो के साथ हुआ, जब रोम की बड़ी आग का उपयोग नीरो ने मसीहियों पर अत्याचार करने के लिए किया, जिन्हें नीरो ने आग लगाने का दोषी ठहराया। नीरो उत्पीड़न के आरंभ को चिह्नित करता है और अंतिम दिनों के अंतिम उत्पीड़न का प्रतिरूप है। वो अंतिम उत्पीड़न अनुग्रह अवधि के समापन तक चलता रहता है, जब पोपीय शक्ति अपने अंत को पहुँचती है और उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। इस प्रकार उत्पीड़न का पहला काल रोम के जलने से आरंभ हुआ और वो रोम के जलने पर ही समाप्त होता है।
और जो 10 सींग तूने उस पशु पर देखे, वे उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे उजाड़ और नग्न कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे। प्रकाशित वाक्य 17:16।
स्मूर्ना की कलीसिया का आरंभ 64 में नीरो के साथ हुआ, जब रोम की महान आग का उपयोग नीरो ने मसीहियों पर अत्याचार करने के लिए किया, जिन्हें नीरो ने आग लगाने का दोषी ठहराया था। 250 वर्ष बाद इसका अंत 313 में मिलान के फरमान के साथ हुआ। ये फरमान उस 20 वर्षीय अवधि का समापन है जो डियोक्लेटियन के विधिक विभाजन से आरंभ हुई थी, और ये स्मूर्ना के उन 250 वर्षों का भी अंत था जो नीरो के साथ आरंभ हुए थे। स्मूर्ना की कलीसिया और नीरो द्वारा निरूपित उत्पीड़न के उन 250 वर्षों में डियोक्लेटियन द्वारा लाए गए अत्यंत भीषण उत्पीड़न के 10 वर्ष भी सम्मिलित थे। उत्पीड़न के वे 10 वर्ष डियोक्लेटियन के उन 20 वर्षों का अंतिम आधा भाग थे जो 293 में साम्राज्य के उसके विधिक विभाजन के साथ आरंभ हुए थे। 293 में डियोक्लेटियन द्वारा साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में विधिक विभाजन से एक 20 वर्षीय अवधि आरंभ हुई जो 2 10 वर्षीय अवधियों से मिलकर बनी थी।
डायोक्लेटियन ने विधिपूर्वक साम्राज्य को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया और इस प्रकार उसने उस भविष्यवाणीगत विभाजन का प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिसे कॉन्स्टेंटीन ने पूर्ण किया। डायोक्लेटियन का विभाजन पूर्व और पश्चिम का था, परंतु उसमें पूर्व में 2 शासक और पश्चिम में 2 शासक सम्मिलित थे, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक प्रधान और एक गौण शासक। 23 फरवरी 303 को डायोक्लेटियन ने मसीहियों के विरुद्ध कई फरमानों में से पहला जारी किया, जिससे महान उत्पीड़न का आरंभ चिह्नित हुआ, जिसे डायोक्लेटियनिक उत्पीड़न भी कहा जाता है, जो रोमी साम्राज्य में मसीहियों पर किया गया सबसे कठोर और सर्वाधिक व्यापक उत्पीड़न था।
और स्मूर्ना की कलीसिया के दूत को लिख, ये बातें वो कहता है जो प्रथम और अंतिम है, जो मरा था और जीवित है। मैं तेरे कामों और क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और मैं उनकी निंदा को भी जानता हूँ जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, परंतु शैतान का आराधनालय है। उन बातों से मत डर जो तुझे सहनी पड़ेंगी। देख, शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डलवाएगा ताकि तुम्हारी परीक्षा हो, और तुम 10 दिनों तक क्लेश उठाओगे। मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रह, और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 2:8-10।
महान उत्पीड़न डियोक्लेटियन के उत्तराधिकारियों, विशेषकर गैलेरियस के अधीन 313 तक चलता रहा, जब मिलान की आज्ञप्ति पर उसका अंत हुआ। नीरो उत्पीड़न का अल्फा प्रतीक है जिसने डियोक्लेटियन को उस भविष्यद्वाणी संबंधी काल के ओमेगा उत्पीड़न के रूप में प्रतिरूपित किया,
जिसका प्रतिनिधित्व स्मुर्ना की कलीसिया करती है। ये उत्पीड़न पूर्व के कॉन्स्टेंटाइन और पश्चिम के लिसिनियस के बीच एक राजनीतिक विवाह और एक संधि के साथ समाप्त हुआ। फरवरी 313 में कॉन्स्टेंटाइन और लिसिनियस मिलान में मिले और मिलान की आज्ञप्ति जारी की, जिसने समस्त साम्राज्य में मसीहियों और अन्य लोगों को धार्मिक सहिष्णुता प्रदान की। अपने राजनीतिक गठबंधन को सुदृढ़ करने के लिए लिसिनियस ने इस भेंट के दौरान या उसके आसपास कॉन्स्टेंटिया कॉन्स्टेंटाइन की सौतेली बहन से विवाह किया। ये विवाह एक विशिष्ट रोमी राजनीतिक गठबंधन था, जिसने दोनों सम्राटों के बीच हुए समझौते पर मुहर लगा दी और अनेक वर्षों के गृह युद्ध के बाद साम्राज्य को अस्थायी रूप से स्थिर करने में सहायता की। ये गठबंधन अधिक समय तक नहीं टिका। बाद में कॉन्स्टेंटाइन और लिसिनियस ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध किया और 324 में कॉन्स्टेंटाइन ने लिसिनियस को पराजित कर एकमात्र शासक बन गया।
नीरो से कॉन्स्टेंटाइन तक स्मुर्ना की भविष्यवाणी संबंधी 250 वर्षों की अवधि पूर्ण हुई और 313 में पर्गमुस की कलीसिया अर्थात समझौते की कलीसिया आरंभ हुई, जिसका अंत 538 में थुआतीरा की कलीसिया के साथ हुआ। स्मुर्ना के 250 वर्ष उत्पीड़न की एक अवधि का प्रतिनिधित्व करते थे और इस समग्र अवधि के अंत में डायोक्लेटियन का उत्पीड़न प्रकाशित वाक्य के 10 दिन 10 वर्ष को पूरा करता है, जहां उत्पीड़न की सबसे भयानक अवधि समग्र कालावधि के एक फ्रैक्टल का प्रतिनिधित्व करती है। वे 10 वर्ष उन 250 वर्षों के एक फ्रैक्टल हैं। वे 10 वर्ष नीरो के उत्पीड़न के ओमेगा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके समापन पर साम्राज्य का ओमेगा स्तरीय विभाजन पूर्व और पश्चिम में हुआ।
विवाह और तलाक।
स्मुर्ना का आरंभ 64 में रोम के दहन के समय हुआ और 250 वर्ष बाद 313 में मिलान की आज्ञप्ति तथा पूर्व और पश्चिम के राजनीतिक विवाह के साथ उसका अंत हुआ। उत्पीड़न का 10 वर्षीय फ्रैक्टल 303 में आरंभ हुआ और 313 में मिलान की आज्ञप्ति तथा पूर्व और पश्चिम के राजनीतिक विवाह के साथ समाप्त हुआ। वे 20 वर्ष जिनका आरंभ 293 में डायोक्लेटियन द्वारा पूर्व और पश्चिम के वैधानिक विभाजन के साथ हुआ था, 313 में पूर्व और पश्चिम के राजनीतिक विवाह के साथ समाप्त हुए। 313 में पूर्व और पश्चिम के बीच हुआ विवाह संधि 324 के तलाक के साथ समाप्त हुई, जब कॉन्स्टेंटाइन ने पश्चिम के लिसिनियस को पराजित किया और रोम का एकमात्र शासक बन गया। 325 का भविष्य सूचक तलाक 301 के प्रथम रविवार विधि के 3 वर्ष बाद हुआ।
313 से 330 तक के 17 वर्ष एक राजनीतिक विवाह की पहचान कराते हैं तथा स्मुर्ना और नीरो द्वारा निरूपित उत्पीड़न के अंत और पर्गमुस द्वारा निरूपित समझौते की कलीसिया के आरंभ को भी। 313 में विवाह के समय पर्गमुस का आरंभ हुआ, जिसके पश्चात 321 में प्रथम रविवार के कानून से आरंभ होने वाले उत्पीड़न का आरंभ हुआ। उसके बाद 324 का भविष्य सूचक तलाक हुआ, जिसने पूर्व और पश्चिम को कॉन्स्टेंटाइन के अधीन एक साम्राज्य में ले आया। 6 वर्ष बाद 330 में पूर्व और पश्चिम में विभाजन भविष्य सूचक रूप से पुनः दोहराया गया। ये 17 वर्ष पर्गमुस की कलीसिया की अल्फा अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 538 में जब थुआतीरा की कलीसिया भविष्य सूचक इतिहास में आई तब तक बनी रहती। वो अल्फा अवधि 330 से 538 तक की अवधि के अंत में एक ओमेगा इतिहास का प्रतिनिधित्व करती। पर्गमुस का ओमेगा इतिहास 496, 508 और 533 की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है।
17 वर्ष
राफिया के युद्ध का टॉलेमी 17 वर्ष तक राज्य करता रहा और राफिया के युद्ध तथा पानियम के युद्ध के बीच 17 वर्ष थे। वे 17 वर्ष प्रतीकात्मक रूप से 313 से 330 तक के 17 वर्षों के साथ मेल खाते हैं। नीरो के स्मिर्ना के 250 वर्ष ने पर्गमुस की कलीसिया के प्रथम 17 वर्षों तक पहुंचाया और वे उन 250 वर्षों के साथ जुड़ते हैं जो 457 ईसा पूर्व में तीसरे फरमान से आरंभ हुए, जो दानियल 8:14 के 2300 वर्षों का प्रारंभिक बिंदु है और एडवेंटवाद की नींव तथा केंद्रीय स्तंभ है।
250 वर्षों के दो साक्षी बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के उन 250 वर्षों के साथ मेल खाते हैं जो 1776 में आरंभ हुए और इस वर्ष 2026 में समाप्त होते हैं।
एडवेंटवाद के अग्रदूतों ने 313 से 330 तक के 17 वर्षों को न तो देखा और न समझा, क्योंकि 1844 में वे अभी तक सातवें दिन के शब्द या सूर्य के दिन के विषय को भी नहीं समझते थे। तथापि उन्होंने प्रकाशित वाक्य 9 के पद 10 के 150 वर्षों को पहचान लिया और वो एक ऐसी अवधि का आरंभिक बिंदु बन गया जो 391 वर्ष और 15 दिनों तक पहुंची, जिसका अंत 11 अगस्त 1840 को हुआ। उस समझ ने परमेश्वर की सामर्थ्य का एक महान प्रकट होना उत्पन्न किया।
अग्रदूतों ने प्रकाशित वाक्य 9 में 150 वर्षों की दूसरी अवधि को नहीं पहचाना। उनकी आधारभूत समझ उस मंच का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर प्रकाशित वाक्य 9 की नई ज्योति निर्मित है। वो ज्योति नीनवे के युद्ध की कुंजी के द्वारा खोली जाती है। वो कुंजी भविष्यवाणी के विद्यार्थी को दानियेल और प्रकाशित वाक्य में निरूपित बाइबल भविष्यवाणी के सभी राज्यों को पहचानने की अनुमति देती है। बाबुल, मादी फारस, यूनान, सेल्यूसिड और टॉलेमिक साम्राज्य, मोहम्मद का राज्य और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये कि वो रोम के साम्राज्य को इस प्रकार विशेष रूप से उभारती है कि न केवल रोम वरन पूर्वी और पश्चिमी रोम के राज्यों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, झूठा भविष्यद्वक्ता, पोपतंत्र पशु और संयुक्त राष्ट्र अजगर के उदय और पतन की भी पहचान कराती है। इन राज्यों के सभी उत्थान और पतन अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता की उन गतिविधियों की गवाही देते हैं जो अंततः संसार को हर मगिदोन तक ले आती है। ये गति दानियेल 11 की अंतिम 6 आयतों में निरूपित है और उस गति का आरंभ 40वीं आयत के गुप्त इतिहास में निरूपित है।
नीनवेह की लड़ाई अंतिम समय की घटनाओं के क्रम में रोम के साम्राज्य, पूर्वी और पश्चिमी रोम के राज्यों तथा पोपीय रोम की गवाहियों को संरेखित करने के लिए भविष्यवाणीगत संदर्भ बिंदु प्रदान करती है। इस प्रकार नीनवेह की लड़ाई वो कुंजी है जो रोम की विभिन्न भविष्यवाणीगत गवाहियों को पूर्णतः स्पष्ट करती है और दानियेल 11 की 14वीं आयत के अनुसार वही रोम है जो दर्शन को स्थापित करता है। वो कुंजी जो उन रेखाओं को एक साथ लाती है नीनवेह की लड़ाई है।
हम अपने अगले लेख में प्रकाशित वाक्य 9 की विपत्तियों पर विचार करने वाले पिछले 5 लेखों को एक साथ लाना प्रारंभ करेंगे।